बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हरि रुद्रमरुत स्तन्ति दिव्येस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः व्याप्तिदेव्ये नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसजानुरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति 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 राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम
राम राघव राम राघव राम राघव पाहि
माम राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम
राम राघव राम राघव राम राघव पाहि
माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम
कृष्ण केशव कृष्ण केशव
कृष्ण केशव पाहि माम
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम
सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव पाहि माम
सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव पाहि माम
शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव पाहि माम
शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव पाहि माम
राम राघव राम राघव पाहि माम
राम राघव राम राघव पाहि
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम
राम राघव राम राघव पाहि माम
राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सदघन चिदघन आनंद घन कल्याण गुण गण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु की अहेतु की कृपा के साथ प्रातःकाल की सुमंगल पावन बेला में विचार चल रहा था गीता जी के 48वें अध्याय के श्लोक को लेकर, द्वितीय अध्याय के श्लोक को लेकर, योगस्य कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय। आसक्ति को त्याग कर योग युक्त होकर कर्म कर। योगस्य कुरु कर्माणि, कल विचार कर रहे थे कि कर्म तो हम करते हैं, पर बात ये विचारणीय है कि हम करते कैसे हैं, कैसे कर्म को करते हैं। योग युक्त होकर करते हैं, संभाव से करते हैं, अर्थात राग और द्वेष से प्रेरित होकर करते हैं, आसक्त होकर करते हैं अथवा अनाशक्ति पूर्वक करते हैं, कर्ता बनकर करते हैं अर्थात अकर्ता बनकर करते हैं, कर्म के फल की अपेक्षा रख के करते हैं, कर्म के लिए अपेक्षा रखते हैं, कर्म के फल के लिए अपेक्षा रखते हैं या उपेक्षित भाव से करते हैं। करते कैसे? भगवान कहते हैं समभाव से कर्म करना चाहिए। समत्व योग मुच्यते, कर्म में संभाव हो, अर्थात बुद्धि को सम रखते हुए, तराजू के दोनों पलड़ों के समान अपनी बुद्धि को सम स्थिर करते हुए हमें कर्म करना चाहिए। बात केवल इतनी है। ये समता यदि हम आ जाए तो हम कोई भी कर्म करें। आप लोगों ने कथा सुनी होगी जांजलि ऋषि की। जांजलि नामक एक बड़े भारी तपस्वी ऋषि हुए हैं। उन्होंने बहुत वर्षों तक एकांत में रहकर कठोर तप किया और बहुत वर्षों के बाद तप करने के उपरांत तप से ध्यान टूटा और ध्यान टूटने पर उन्होंने अपने इतने में एकाएक घटना घटी कि एक पक्षी ने उनके शरीर के ऊपर बीट दिया। इस बीट को देखते होने के लिए जैसे दृष्टि उन्होंने ऊपर की ओर उठाई तो जिस पक्षी ने उनके शरीर में बीट दिया था वो पक्षी जलकर राख होकर नीचे गिर पड़ा। जांजलि ऋषि के मन में ये विचार आया कि देखो मेरा तप का प्रभाव कितना बढ़ चुका है, मैं दृष्ट आंख उठाकर जिसे देखूं वक्र दृष्टि से वो मेरे सामने टिक न सके, वो जलकर राख हो जाए। उन्हें अपने तप का अभिमान हो गया और उन्होंने समझ लिया कि बस मेरी तपस्या में मुझे अब सिद्धि प्राप्त हो गई है। इसी बीच प्राकृतिक घटना थी, भूख लगाई तो शहर की ओर मोह किया। जब गांव में पहुंचे तो नारायण हरि के लिए एक सदग्रस्त के द्वार पर जब गए, उन्होंने भिक्षान देही किया नारायण हरि की, तो अंदर मां अपने पति की सेवा शुश्रूषा में लगी हुई थी। हमारे देश की सती देवियों का चरित्र इतना महान है। नारायण कथा आती है महाभारत में, एक सती स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी, छोटा सा बालक उसका खेलते हुए आग में गिर पड़ा। पति की सेवा में अडिग भाव में लगी हुई स्त्री पति की सेवा में विघ्न समझकर बच्चे को बचाने के लिए नहीं दौड़ी, अपितु उस बालक को अपने सत के प्रभाव से उसने इतना शीतल कर दिया कि पति सेवा से निवृत्त होकर जब वो बालक के पास गई तो आग के अंगारे उसे शीतलता दे रहे थे, उस पर खेलते हुए बालक को उसने उठा लिया गोद में। ऐसा अद्भुत प्रभाव देखने को मिला। ये प्रभाव किसका है ना? ये प्रभाव है एक निष्ठता का। वह स्त्री एक निष्ठ भाव से अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करती हुई अपनी पति निष्ठा पराण होकर पति की उपासना करती है तो उसी से ही उसे उस निष्ठा के फलस्वरूप, उसके प्रेम के फलस्वरूप उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह असंभव को भी संभव कर देती है। इसलिए प्रश्न इस बात का नहीं है कि देवता बड़ा है या छोटा है, इष्ट किसका कितना बड़ा है। नारायण, याद रखना, सबके इष्ट महान ही होते हैं। जो जिसको इष्ट बनाकर चल रहा है, चाहे आप गुरु निष्ठा से गुरु को ही इष्ट समझकर चल रहे हैं या किसी सद देवता को, भगवान को, जिसने जिस रूप में अपने इष्ट को स्वीकार किया है, उस इष्ट को कभी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसके प्रति महान और सत्यवत बुद्धि ही रखनी चाहिए और सत्यवत और महान बुद्धि से आप एक निष्ठ भाव से उसकी सेवा करेंगे, उपासना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी वो निष्ठा के अनुसार आप तब से वो महान शक्ति प्राप्त हो जाती है ना। पति सेवा पारायण, स्त्री अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। बाहर से जांजली ऋषि ने कहा कि मुझे बड़ी जोर की, उन्होंने नारायण भिक्षांदेही की, महिला ने अंदर से आवाज दी, महात्मा ठहरो, मैं पति सेवा से निवृत्त होकर आपको भिक्षा देती हूँ। जांजली ऋषि सोचने लगे, ये मूर्ख महिला ये नहीं जानती है कि मेरा तप कितना महान है, कितना बड़ा तपस्वी उसके द्वार पर आया हुआ है, और जरा सा मेरे अंदर क्रोध आ गया तो कितना अनर्थ हो जाएगा। पर वो महिला कहती है जांजली ऋषि से, मुनिवर, मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जलकर राख हो जाऊंगी। जांजली को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि ये महिला मेरे को मिली नहीं है, ये मेरे कैसे समझ गए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और ये इसे कैसे मालूम कि मेरे देखने से चिड़िया जल गई। थोड़ी देर बाद पति सेवा से निवृत्त होकर भिक्षा लेकर जब वो महिला आई, तो आने पर उन्होंने पूछा, माता ये बताएं कि आप मेरे विषय में कैसे जाने, और आप जो इतना सब कुछ जानती हैं, आप आखिर हैं कौन, आप अपने विषय में बताइए। कहा, तुम्हें मेरे विषय में जानना हो तो यहाँ से एक काशी में तुलादार नामक वाणिज्य है, बनिया है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ बता देंगे। जांजली ऋषि चले, देखा कि जिस जहाँ वो वाणिज्य के पास, व्यापारी के पास पहुँचे, वणिक के पास, तो उसके दुकान में बहुत बड़ी भीड़ लगी है सौदा लेने वालों की। इतने व्यस्ततम दिखाई दिए कि वो सिर उठा करके भी ऊपर देखने की उन्हें फुर्सत नहीं। इतने बड़ी भीड़ भाड़ में पीछे खड़े जांजली ऋषि बहुत दूर, मन में सोचने लगे, जो व्यक्ति अपने कर्म में इतना व्यस्त दिखाई पड़ता हो, भला उसे ईश्वर के लिए विचार करने के लिए कहाँ समय मिलता होगा, कहाँ फुर्सत मिलती होगी, कहाँ बैठकर कब वो ब्रह्म चिंतन करता होगा, कब वो ईश्वर आराधना करता होगा, उसे अपने विषय में सोचने के लिए फुर्सत कब मिलती होगी। जांजली मन में विचार कर रहे थे, इतने में बनिक ने कहा, महाराज आप थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं आपको उस सती स्त्री के विषय में सब कुछ बता देता हूँ। सोचने लगे कि ये कैसे मालूम इसे कि मुझे उस स्त्री ने यहाँ भेजा है, तो आप उस स्त्री के विषय में पूछने के लिए मेरे पास आए हैं ना, तो ये कैसे कि मैं उस स्त्री के विषय में पूछने के लिए इनके पास आया हूँ। और आश्चर्य लगा। धीरे धीरे भीड़ कम हुई, निकट पहुंचे, पहुंचने पर उन्होंने पूछा उनसे कि ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम है। मेरी जो अब तक की घटनाएं घटी जो आपने बताई वो आपको कैसे मालूम, आपको किसने बताया मेरे विषय में। तराजू की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे इस तराजू ने बता दिया। अब तो और बड़ा आश्चर्य हुआ कि तराजू से उन्होंने सीखा, उसने बताया। बोले हाँ, तराजू की ओर इशारा था कि मेरे कर्म से ही मैं सब कुछ सीखा हूं। मेरा जो कर्म है इस कर्म से मैंने सीखा हूं। बोले कर्म से कैसे सीखे हो? मैं इससे सीखा हूं, तराजू से सामान तोलते हुए, जैसा तराजू का तोल, तोल तोलते समय पलड़े नीचे ऊपर होते रहते हैं, परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, और उस तराजू के ऊपर लगा हुआ गुच्छा अपनी जगह स्थिर रहता है। उसी तरह से परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं, वो बदलती रहती हैं, आती और जाती रहती हैं, पर आती जाती परिस्थितियों के बीच जो आत्मा है वो सम है, वो आत्मा सर्वव्यापक है, और इन परिस्थितियों का जो दृष्टा है, चेतन है, साक्षी है, वो सम है, और उसके साथ उस आत्मभाव में अपनी बुद्धि को सम भाव में स्थित करते हुए हमें इन परिस्थितियों को देखते रहना चाहिए, देखते रहें, और जो आती है वो जाती है, जो जाती है वो आती है, जो जन्मता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्मता है। जन्मने के क्षण के साथ कहते हैं अकस्मात मृत्यु हो गई, आकस्मिक किसी की मृत्यु होती ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं अरे बिल्कुल ठीक ठाक थे, अकस्मात हो गया। मृत्यु के लिए कभी अकस्मात शब्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मृत्यु तो जन्म के साथ ही उसी क्षण से आरंभ हो गई है, उसी क्षण से हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं अकस्मात हो गया। नारायण जिसका जन्म होता है, जन्म के साथ मृत्यु आरंभ हो जाती है, तो मृत्यु के साथ जन्म आरंभ हो जाता है। परिस्थितियां कभी अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा, मैंने अपने इस धंधे से, इस काम से सीखा, इस तराजू से सीखा, उनका संकेत ज्ञानजलि ऋषि के लिए उस तराजू की ओर था। मैंने सीखा कि परमात्मा सम है, व्यापक है। तराजू तोल करते समय ये गरीब का सामान तोल रहा है, ये अमीर का सामान तोल रहा है, तोल करते समय पक्षपात नहीं करता। उसी प्रकार जीवन में अपने आप को पक्षपात रहित होकर व्यवहार करना चाहिए। मैंने यही तराजू से सीखा, और इसी मेरे निष्पक्ष पक्षपात रहित व्यवहार ने मुझे सत्य का बोध करा दिया, और इससे मुझे वो सामर्थ्य प्राप्त हो गई कि मैं अब सब कुछ जान सकता हूँ और सब कुछ देख सकता हूँ। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, याद रखना हमें परमार्थ में हम सब पूर्ण है, कोई यहाँ अपूर्ण नहीं है, हम अपने स्वरूप में परिपूर्ण है, परंतु सुधारना है तो हमें अपने व्यवहार को ही सुधारना है, परिवर्तन कुछ करना है, बदलाव कुछ करना है, तो स्वरूप में बदलाव नहीं है, वो कोई अप्राप्त है और साधन से उसे प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। साधन से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, जो अप्राप्त होता है वो तो साधन से प्राप्त किया जाता है, जो प्राप्तव्य है वो तो प्रतिज्ञात्मनी, वो तो केवल आत्मा को पहचानना है ना, उसके लिए उस बुद्धि की आवश्यकता है जो पहले से है, परंतु दीपक तो है, जल रहा है, परंतु धीरे धीरे हवा से धूल की कणें आकर उसके ऊपर जमा हो गई हैं, जिसके कारण काली कालिख भर गई है, रोशनी धुंधली पड़ गई है। ऐसा नहीं कि प्रकाश नहीं है, प्रकाश तो है, पर उसके ऊपर आई हुई कालिक हट गई, तो दिया तो पहले से जल रहा था, चेतन था। बुद्धि में आए हुए अज्ञान के आवरण दूर हो गए, वह स्वरूप स्पष्ट बोध दिखाई पर अनुभव, वो स्वरूप तो पहले से ही, ज्ञान स्वरूप तो वो पहले से ही था, है, उसमें कुछ बनाया नहीं गया, परंतु बनाना है। यदि कुछ बनने की बात आती है, कुछ बनाने की बात आती है, तो हमें बनना बनाना क्या है नारायण, अपने व्यवहार को शुद्ध करना है। और व्यवहार शुद्ध, कर्म शुद्ध कब होगा, जब आप योग युक्त होकर संभाव से कर्म करेंगे। कभी राग से प्रेरित होकर, कभी द्वेष से प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं, द्वेष कहीं कहीं बड़ी द्वेषपूर्ण भाव से, और कभी कभी अत्यंत राग से युक्त होकर, और राग और द्वेष का मल ये हमारे कर्म में आ जाते हैं, जिसके कारण अंतःकरण मलिन हो जाता है नारायण। इसलिए कर्म निष्पक्ष हो, और निष्पक्ष कर्म संभाव से किया जाने वाला कर्म ही योग युक्त कर्म है, योगस्य कुरु कर्माणि, यही योग से युक्त होकर कर्म है। और ऐसा जो कर्म है, जिसके लिए भगवान कहते हैं, जो सिद्धि और असिद्धि में सम होकर समत्व योग के द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है, वही कर्म श्रेष्ठ है सकाम कर्म की अपेक्षा। जो सकाम कर्म है, और सकाम कर्म गीता जी की दृष्टि में किसी फल को लेकर चाह रखकर किया जाने वाला जो कर्म है, सकामता से प्रेरित होकर ऐसा करेंगे तो इसका फल मुझे मिलेगा। ईमानदारी से विचार करो नारायण, सारे दिन में हम कितने काम बिल्कुल सम होकर करते हैं, और कितने दिन हम सकाम, ऐसा करने से क्या मिलेगा, फल की आशा रखकर, फल में आसक्त होकर जो हम कर्म करते हैं, वही हमारे लिए बंधन का कारण बनता है। कल भी मैं ये बात आपको कह रही, सकाम करो। अच्छा, एक बात रहे कि सकामता छूटे, कर्म निष्काम करना चाहिए, पर निष्काम कर्म हो नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या करें, करना तो चाहिए निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति करो, वही प्रेमा भक्ति है, निष्काम भाव से धर्माचरण करें, अच्छे कर्म करें, धर्म का, जैसे कि कल मैंने चर्चा की थी, हमको ये निष्कामता अपना स्वभाव बन जाए, अकर्ता बनकर स्वभाव व समय कर्म धर्म करना चाहिए। परंतु यदि निष्कामता हमारे से हो नहीं पा रही है, तो तब हम क्या करें, उसके लिए निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। यदि नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म का समर्पण तो भगवान के लिए करें। कर्म करके पूजा की, और पूजा करके उस पूजा का जो फल है, श्री कृष्ण प्रियंताम नमम, भगवान को अर्पण कर दो, पाठ पढ़ो भगवान को अर्पण कर दो, जप करो भगवान को अर्पण कर दो, पूजा करो भगवान को अर्पण कर दो, सेवा करो भगवान को अर्पण कर दो। जो भी हम कर्म करें, यदि उस कर्म को भगवान के अर्पण करते हुए जाएंगे। अच्छी बात तो ये है कि हम किसी प्रकार की सकाम भावना को लिए बिना केवल केवल कर्म कर्म के लिए होना चाहिए। केवल केवल कर्म कर्म के लिए जब होता है तो ऐसे संबुद्धि से किया हुआ कर्म ही योग है, क्योंकि समता का नाम सम का नाम ही योग है। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए दूसरा उपाय भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म करे सब कर्म को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हुआ करे। हमारा यद्यप कर्म करूंगी तदखिलं संभोतव आराधनम्, जो कुछ भी मैं कर्म करूं वो भगवान की अखिल कर्म मेरा ईश्वर की उपासना बन जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। शिव मानस पूजा में आप कहते हैं ना, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम घ्रम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं संभोतवाराधनम्। हे प्रभु, मेरा संपूर्ण कर्म आपकी आराधना बन जाए, सारे शब्द मेरी आपकी स्तुति बन जाए, हर शब्द आपकी स्तुति हो, हर कर्म आपकी पूजा हो, मेरा सोना आपके लिए समाधि हो। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि। संत कहते हैं जहां जहां मन जाए वहीं वहीं समाधि, जहां जहां मन जाए वहीं वहीं तत्र तत्र समाधि, वहां वहां समाधि। बोले कैसे? यदि आपने विचार कर लिया कि जहां आप गए आपका मन गया है वहां सब जगह कारण स्वरूप में कौन विद्यमान है, कारण स्वरूप में वहां कौन विद्यमान है। कुछ दिनों पहले एक सज्जन मेरे पास आए, आकर कहने लगे, माते जी बस इस जीवन में एक ही इच्छा है कि मुझे केवल भगवान के दर्शन हो जाए, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। बोले हाँ, और कहां से आए हैं? बस मैं यात्रा में निकला था, चार धाम यात्रा की, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, और इससे पहले मैंने द्वारिका रामेश्वरम जगन्नाथपुरी वृंदावन गया और सब जगह मैंने दर्शन किए। रामेश्वरम में भगवान रामेश्वरम के दर्शन किए, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, द्वारिकापुरी में भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन किया और वृंदावन में भगवान बांके बिहारी का दर्शन किया, बद्रीनारायण में भगवान नारायण का दर्शन किया। मैंने कहा इतनी जगह गए, सब जगह दर्शन किए? बोले हाँ किए। तो मैंने किसका दर्शन किया? भगवान का दर्शन किया। बोलते क्या है कि भगवान का दर्शन किया, परंतु जब सब जगह तुम भगवान के दर्शन करके आए हो तो फिर भगवान का दर्शन कैसा करना चाहते हो? इसका मतलब यह है कि तुम गए दर्शन किए, उन दर्शनों को तुमने भगवान नहीं समझा, उन दर्शनों को तुमने एक मूर्ति समझा, तो इसलिए तुम्हारे मन में अभी दर्शनों की इच्छा रह गई है। यदि तुमने उन्हें भगवान समझा होता, तुम्हारी दृष्टि ने उन्हें भगवान उनमें भगवान देखा होता, तुम्हारी भाव दृष्टि ने, भाव की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, यदि तत्व और भाव से युक्त जंतु दृष्टि से आपने उन्हें देखा होता तो तुम्हें भगवान ही दिखाई पड़ते, तब तुम्हारे अंदर ये इच्छा न रह जाती कि मैं भगवान के दर्शन करूं। न तो हमारे पास भाव की दृष्टि है, न हमारे पास तत्व की दृष्टि है, केवल इस स्थूल दृष्टि से जाकर देखते हैं, मूर्ति दिखाई पड़ती है तो मूर्ति दिखाई पड़ने पर भगवान को देखने की इच्छा बनी रहती है, मूर्ति दर्शन करने गए। हम तीर्थों में जाते हैं, किसका दर्शन करते हैं? मूर्तियां देखकर। और कहते भी क्या, वहां गए थे बड़ी सुंदर मूर्ति के दर्शन थे। अरे नारायण, मूर्ति दर्शन तो जड़ दर्शन है, पर इस मूर्ति में भी यदि आप भाव और तत्व की दृष्टि से देखें तो वो मूर्ति मूर्ति नहीं है। उस भाव में भी कारण स्वरूप में देखें, तत्व स्वरूप में देखें, तत्व की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से आप देखते हैं, भाव की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से आप देखते हैं, तो वो तो स्वयं परमेश्वर ही है, भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। इसलिए संत कहते हैं यतो यत्र यत्र मना याते तत्र तत्र समाधाय, वहीं वहीं कारण स्वरूप में वो सर्वत्र है, सब जगह, सब कारणों में, सब निमित्तों में, सबका उपादान कारण, सबका निमित्त कारण केवल एकमात्र वही है, परमेश्वर ही है। तो विचार करें हम कि हमारा कर्म भगवान की उपासना बन जाए, प्रत्येक कर्म मेरी भगवान की पूजा हो और प्रत्येक कार्य कर्म को मैं पूजा बना लूं। कहते तो हैं कर्म ही पूजा है, पर वो कर्म को हम काश पूजा बना सके। सब शब्द भगवती की स्तुति बन से, तव च काकिल स्तुति अंबिके अखिल शब्द मई। ये सारे जो शब्द हैं, ये सब शब्द उन्हीं की स्तुति तो गान कर रहे हैं। और ये शब्द की जो राशि है, निखिल शब्द मई, जो शब्द है, ये शब्द क्या है? आखिर तत्व ही तो है, ब्रह्म ही तो है, उसके अतिरिक्त तो नहीं है। इसलिए सब शब्दों में उनकी स्तुति हो सके, सब क्रियाएं उनकी पूजा हो सके। यद्यप कर्म करो, मैं जो कुछ मैं आचरण करूं वो मेरे भगवान की, मेरे इष्ट की आराधना बन जाए। उसके लिए हमें विचार करना होगा कि प्रत्येक कर्म, मेरा उठना, बैठना, सोना, खाना, आना जाना, देखना, बोलना, हंसना, सब में ईश्वरमय हो, परमात्मामय हो, परमात्मा के लिए पूर्ण रूप से समर्पण हो। नारायण, कर्म करें और भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। यदि आप सकाम कर्म करके भी, सकामता भी है कि कामना यही है, ये मेरा कर्म मेरे ईश्वर को प्रसन्न करने वाला हो, यदि ईश्वर की प्रसन्नता का भाव रख करके इस सकाम भाव से आप कर्म करते हैं, तो वो कर्म कभी आपके लिए बंधन का कारण नहीं बन सकता है। यूं तो बीज में वो ताकत है कि जो बीज मिट्टी के बीच में पहुंच गया है, वो बीज अंकुर पैदा करेगा ही करेगा, भले ही उसमें समय थोड़ा और ज्यादा हो, परंतु अंकुर पैदा करेगा ही करेगा। परंतु यदि उसे बीज को थोड़ा सा आग का संग मिल गया हो, अग्नि में सेक करके धरती के बीच में पहुंच गया हो, तो फिर वो बीज अंकुर पैदा नहीं कर सकता। उसी तरह से यदि वो कर्म भगवान को समर्पित हो गया हो, तो वो आपके लिए बंधन का कारण नहीं हो सकता। यदि आप सकामता ही करना चाहते हैं, तो सकामता ये है कि आप ईश्वर, आप कर्म कर रहे हैं, विचार करें कि आप संसार को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं या अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं इसमें किसकी प्रसन्नता है, ये मेरा कर्म। हम संसार की प्रसन्नता ढूंढते हैं, जगत प्रसन्न हो जाए मेरे, जगत प्रसन्नता पर। मुझे एक बात याद आ रही है नारायण, भगवान राम, राम राज्य है, राम राज्य का साकार रूप है कि राम के राज्य में कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है। यही तो राम राज है ना, जिसमें किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, वही राम राज्य, राम राज्य है। और राम राज्य में भगवान राम का आदेश है कि सारी अयोध्या नगरी में घूम करके पता लगाया जाए कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं। यदि मेरे किसी राजा के किसी आचरण से, किसी कार्य से किसी को भी कष्ट पहुंचता हो, किसी के किसी प्रकार के आचरण से, तो वो कार्य न किया जाए। गुप्तचर घूम रहे थे, उनमें से एक बार की घटना थी कि लक्ष्मण जी ने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है, परंतु उसने अपने पांव पर लोहे के बड़े बड़े बूट पहने हुए, लोहे के बूट पहन करके, जूता पहनकर खेत में हल चलाते हुए जब देखा तो उन्हें लगा कि ये किसान कितना कठोर परिश्रम कर रहा है। ऐसे उसके पास गए और जाकर उससे पूछा, भैया तुम इतना कठिन कार्य क्यों कर रहे हो, एक तो हल चला रहे हो और इतने भारी तुमने लोहे के बूट अपने पांव पर पहने हुए। वो किसान की ऐसी स्थिति देखी और जाकर के भगवान श्री राम से कहा, और भगवान राम को जब समाचार मिला कि किसान खेत में बूट चला करके काम कर रहा, उससे पूछा गया, उसने कहा कि मेरी व्यवस्था लाचारी ये है कि मेरे खेत में बहुत बिच्छू हैं, और यदि मैं पांव में लोहे का बूट नहीं पहनूंगा तो इन बिच्छुओं से मेरा बचाव कैसे होगा, इसलिए इनसे बचने के लिए लोहे का बूट मैं पहना हुआ। भगवान राम को इसकी जानकारी लगी और राम जी ने आदेश दिया, लक्ष्मण जी से संदेश भिजवाया कि उस किसान से कहो कि उस खेत को छोड़ दे, उसके बदले और दूसरा खेत दे दिया जाएगा, उस खेत को वो छोड़ दे। किसान के पास जब समाचार पहुंचा कि आपको राम जी ने कहा है कि आप इस खेत को छोड़ दो, आपको दूसरा खेत दे दिया जाएगा, दूसरा खेत मिलेगा, उस किसान ने कहा, किसने कहा, राम जी ने कहा, हाँ मैं उन राम जी की बात को मानूं क्या, जो राम धोबी के कहने पर सती साध्वी सीता को अपने घर से वन में छोड़ दे, उस राम के कहने पर मैं अपना खेत छोड़ दूं। उसने कहा कि मैं राम जी के कहने पर अपना खेत छोड़ने वाला नहीं हूं, वो तो छोड़ वही सकते हैं, मैं नहीं छोड़ सकता अपना खेत उनके कहने पर। अर्थात राम जी ने सोचा था कि मैं सबको प्रसन्न करूं, संसार कभी किसी से प्रसन्न न हुआ और न होगा। नारायण, यदि आप जगत को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये सोच रहे हो कि बस मेरे इस कर्म से सारा संसार, सारा जगत प्रसन्न हो जाए, तो ऐसा सोचना, तो जिस संसार को राम जी स्वयं प्रसन्न नहीं कर सके, वो आप और मेरे से कुछ प्रसन्न होने वाला नहीं है। इसलिए हमें विचार ये करना होगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं ये जगत की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। कभी पति को प्रसन्न करने के लिए, कभी संतान को प्रसन्न करने के लिए, कभी संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए हम उनके आगे तरह तरह के वेश बनाकर नाचते रहते हैं नारायण। पर क्या कभी सब आपसे संतुष्ट हो सके, यदि इन सब को प्रसन्न के साथ साथ मन में कहीं भगवान के लिए प्रसन्न करने के लिए हमने कार्य किया होता, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, और जो जिस रूप में है उसी रूप में अपने भगवान को प्रसन्न करने मेरा ये कार्य करके भगवान को अर्पण करें, ये मेरा निष्काम भाव से, पवित्र भाव से, निश्चल भाव से ईश्वर प्रसन्नता के लिए आप कार्य करें और वो कार्य करके भगवान को अर्पण करें। मत कर्म करता, भगवान कहते हैं जो मेरे लिए कर्म करता है। जब भक्त मेरे लिए कर्म करता है, मत कर्म करता, मेरे लिए कर्म कर, तीन बातें हैं नारा, मत कर्म करता, भगवान के लिए कर्म करे, भगवान की भक्ति को हृदय में रख करके करे, और ईश्वर पराण होकर के कर्म करे। बुद्धि में ईश्वर पराणता हो, शरीर से भगवान के लिए कर्म हो, और मन में भगवान के लिए भक्ति हो। यदि ये तीन बातें आपके अंदर आ जाएंगी तो आप सचमुच परम योगी नहीं, परम योगी होंगे। बुद्धि में ईश्वर परायणता, मन में भगवान के प्रति परम अनुराग, और शरीर से कर्म भगवान के निमित्त। जो कुछ आप कर्म कर रहे हैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। अपने भगवान को ही, मेरे स्वयं प्रभु भी मेरे आसपास अनेक अनेक रूप बनाकर खड़े हैं। ये जो चारों ओर मुझे दिखाई दे रहे हैं ये केवल एक मेरा नारायण ही अनेक रूप में मेरे सामने खड़ा है। बात तो केवल इतनी है नारायण, हम मिल उसी को रहें जिससे हमें मिलना चाहते हैं, हम देख उसी को रहें जिसे हम देखना चाहते हैं, हम सुन भी उसी को रहें जिसे हमें सुनने की ललक है। परंतु फर्क इतना है, केवल अंतर इतना हो गया है कि पुराने समय की बात है। पुराने समय में क्षत्रिय राजाओं में ये प्रथा हुआ करती थी, किसी स्वयंवर में यदि राजकुमार स्वयं उपस्थित न हो सके तो वो अपनी उपस्थिति अपनी तलवार भेजकर गिना देता था। तलवार भेज दिया और उसकी उपस्थिति मान ली जाती थी, और उस उपस्थिति, उसे उपस्थित ही मान करके राजकुमारी उस तलवार को ही माला पहनाकर राजकुमार का वरण कर लिया करती थी, उसे पति के रूप में वरण कर लेती थी। ऐसी परंपराएं थी। ऐसी ही एक घटना हुई, राजकुमार ने अपनी तलवार भेजी, राजकुमारी ने माला पहना दी और राजकुमारी ने उसे पति के रूप में वरण कर लिया राजकुमार को। राजकुमार के मन में राजकुमारी के लिए एक बात आ गई कि मैं उसके पातिव्रत का पता करूं, वो उसकी पति पारायणता की मैं परीक्षा लूं। राजकुमार के मन में ये बात आ गई और आकर राजकुमार ने राजकुमारी को पत्र लिखकर, प्रेम पत्र लिखकर भेजा, और उस पत्र में अपना परिचय नहीं दिया। अन्य राजकुमार बनकर वो पत्र भेजा। राजकुमारी ने उस पत्र को पढ़ा, कुछ समय बाद फिर पत्र भेजा और बार बार अपनी चाहत को उस पत्र के द्वारा उस राजकुमारी के आगे रखा, और राजकुमारी अपने चाहने वाले राजकुमार के इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर धीरे धीरे आकर्षित हो गई, और आकर्षित होकर मिलन प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया। जब मिलने के लिए पहुंचा तो वहां कोई और नहीं था, उस राजकुमारी का स्वयं का ही पति था। और इस प्रकार जब राजकुमारी वहां पहुंची और उसने उस राजकुमार को पाया तो वो अपनी इस घटना से बड़ी लज्जित हुई, दुखी हुई। परिणाम ये हुआ कि उसे दुखी होकर, निराश होकर लौटना पड़ा। उसके पति ने उसका त्याग कर दिया। अब यहाँ विचार करो कि राजकुमारी का दोष क्या था। राजकुमारी का दोष कुछ नहीं था, दोष सिर्फ इतना ही था कि उसने अपने पति को ही किसी अन्य पुरुष के रूप में चाहा। उसकी जो चाह थी वो बुरी नहीं थी, वो तो उसी के पति के लिए थी, पति के लिए ही थी, परंतु पति के लिए तो थी, वो किस रूप में थी? पति के रूप में न होकर किसी अन्य पुरुष के रूप में थी। इसलिए उसे जीवन में दुखी होना पड़ा, निराश होना पड़ा, अर्थात कष्ट उठाना पड़ा। तो ठीक हमारे लिए भी यही घटना है कि हम संसार में जो चाहते हैं, अन्य समझ लिया है हमें, अन्य समझ करके हम इस जगत को जो स्वीकार रहे हैं, ईश्वर से अन्य समझकर, अन्य भाव से जो हमने जगत अपनाया हुआ है, ये हमारे लिए दुख का कारण है। यदि इस अन्य के भाव को छोड़ दें तो आपके अंदर अनन्यता हो जाएगी। ईश्वर से अन्य कुछ नहीं है, ये जानना ही अनन्यता है। तो आपका अनन्यता से अनन्य कर्म, एक कर्म नहीं अनेक कर्म, वो आपका ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हो जाएगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाएगा। सकाम कर्म, यदि आप निष्काम नहीं हो सकते हैं तो याद रखें, ये तो कर सकते हैं कि आप जो भी कर्म करें वो भगवान की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए और ईश्वर को ही प्रसन्न करने के लिए कर्म होना चाहिए। अब हमें ये विचार करना है कि हम जो कर रहे हैं दिन रात, वो किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं या जगत को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? जगत प्रसन्नता की भावना को लेकर हम यदि कर्म कर रहे हैं तो ये संसार जो प्रतिक्षण सरक रहा है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है, जो स्वयं परिवर्तनशील है, जो स्वयं बदलने वाला है, वो संसार कभी आपसे प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि वो स्वयं एक जैसा नहीं है, वो प्रत्येक क्षण बदल रहा है। तो ये संसार बदलता रहेगा और इसलिए आप इसे कभी प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। और यदि आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर सम है, व्यापक है, सर्वत्र है, एक रस है, एक रस अखंड अनंत अरूप, वो एक अखंड अनंत अरूप है, इसलिए उनको ही प्रसन्न किया जा सकता है। वो एक है, अभेद है, अखंड है, अनंत है और उनकी प्रसन्नता हो सकती है। तो भगवान यही कहते हैं, योगस्य कुरु कर्माणि संगत तक्त्वा धनंजयः, अर्थात योग युक्त होकर तुम कर्म करो, सिद्ध आसक्ति को छोड़कर योग युक्त होकर, सम होकर कर्म करते हुए सिद्धि और असिद्धि को, दोनों को समान जानते हुए, ऐसा जो समभाव है यही समत्व योग है। और ये समत्व योगी ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। केवल समत्व योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अन्य योग, चाहे वो पतंजलि का अष्टांग योग हो, यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये चाहे कोई भी योग हो, योग का आश्रय यही हमें समझना चाहिए कि जीवन में हमारे अंदर समता आ जाए। मन, बुद्धि और कर्म, इन तीनों में समता। संत कौन है? संत वो जिसका मन वचन और कर्म एक है, वो संत है। और जिसका कर्म मन और बुद्धि तीनों में समता है वह कौन है? वही कर्म योगी है, वो भक्त योगी है, वो ज्ञान योगी है। मैं हमेशा कहा करती हूँ, सतत मन में प्रसन्नता हो तो समझना कि आप भक्त हैं, और बुद्धि में समता हो तो समझना कि आप ज्ञानी हैं। बुद्धि का सम होना ज्ञान है और मन का प्रसन्न होना भक्ति है। मन प्रसन्न हो, प्रसन्न मना, आपके मन में कोई विषाद नहीं हो, दुख नहीं, दुख रहित मन, निराशा से रहित मन, हमेशा प्रफुल्ल खिला हुआ मन, प्रसन्न मन, ऐसा मन हो, मन में प्रसन्नता कैसे बन सके? और मैं हमेशा कहती हूँ, इस मन को प्रसन्न रखना यही ईश्वर भक्ति है। ईश्वर भक्ति, परमात्मा की भक्ति क्या है? अपने मन को खुश रखना। अच्छे ईमानदारी से बताओ, संसार में ये जो कुछ तामझाम आपने अपने पास अपना सारा प्रपंच इकट्ठा किया है, ये किसके लिए किया है? ये सब पाकर मेरा मन खुश हो जाए? ईमानदारी से बताओ, इतना सब जोड़ लिया, क्या ये सब पाकर आप खुश हो सके? ये सब तो ऐसा ही हुआ जैसे मकड़ी तंतु को अपने में पैदा करती है और तंतु बुनती चली जाती है और उसके अंदर स्वयं उलझती चली जाती है। उसी भांति वो कहीं से लाई नहीं, वो अपने से ही पैदा करके हमारे अपने मन ने ताना बाना बुना और अपने मन के बुने हुए ताने बाने में स्वयं फुसफुसते चले गए। और ये ताना बाना तो इसलिए बुना था कि इसमें रहकर हम बड़े प्रसन्न रहेंगे, परंतु बन गया हमारे लिए बंधन का कारण, प्रसन्नता नहीं रह सकी। तो तब प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं? बोले प्रसन्न रहने रह वही सकता है, संतुष्टम सतत योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयी। आप कहते हैं हमेशा संतुष्टम सतत योगी, योगी ही संतुष्ट और प्रसन्न रह सकता है। योगी संतुष्ट रहने का मूल मंत्र है योगी, योग के बिना संतुष्टि नहीं हो सकती, प्रसन्नता नहीं हो सकती। तो योगी ही संतुष्ट रह सकता है? बोले योगी कैसे संतुष्ट रहता है, कैसे सतत प्रसन्नता रहती है, मन में निरंतर उसकी प्रसन्नता कैसे रहती है? बोले योग के साथ जुड़ा हुआ है, उसने योग कर लिया है, अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ दिया। जोड़ना भी योग है, स्थिर हो जाना भी, चित्त का स्थिर हो जाना अर्थात सम हो जाना योग है, मन का सम हो जाना योग है। मन सम कैसे हो और बुद्धि सम कैसे हो, बस यही हमें जानना है। इसी की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बड़े प्रेम और भाव से भगवत नाम स्मरण कर ले एक आधे मिनट के लिए। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, हम राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, हम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव पाहि माम। हम सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव पाहि माम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।